शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिछरे हमारे। और एक समस्या खड़ी होती है कि आप बार बार ये कह रहे हो कि वो शुभ भाव रूप कर्म धारा बंध का ही कारण है और ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी कोई बंध के कारणों में प्रवृत्ति नहीं करता। तो हमने तो चौथे गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक के ज्ञानियों को, अंतर आत्माओं को ऐसी कर्म धारा में प्रवर्तित करते हुए देखा है। उसका सीधा सच्चा जवाब तो यही है, किसी चीज के होने से उसको वो उपादेय मानता है ऐसा नहीं माना जा सकता। क्योंकि एक बात तो नक्की है कि सारा जगत अशुभ भाव को बुरा मानता है, जो शुभ भाव को भी अच्छा मानते हैं वे भी अशुभ भाव को बुरा मानते हैं, फिर भी उनके जीवन में अशुभ भाव देखा जाता है ना। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि हम जिस जिसको बुरा माने वो चीज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। पांच पापों को कौन अच्छा मानता है, और हर ग्रस्त के जीवन में पांच पाप का एक देश ही सही, वे तो अनुवृत्तियों के लिए होते हैं ना। कितनी स्पष्ट बात है कि हमें अनुकूल संयोग पुण्य से प्राप्त होते हैं, और हम बहुत स्पष्ट इस बात को मानते हैं कि अनुकूल स्त्री पुत्र और रुपया पैसा भी जो हमारे अनुकूलता में काम आए, ऐसा रुपया पैसा नहीं जो हमारे जेल जाने में निमित्त बने। ख्याल में ये मैं कई दफे कह चुका हूं, उस बात को फिर दोबारा लंबाना नहीं चाहता हूं। कौन सी बात, कि हम जो ऐसा मानते हैं कि इस संयोग हैं जो अनुकूल प्रतिकूल जो भी, वो सब संयोग पुण्य के उदय से ही मिलते हैं, ये बात सही नहीं है। तो रुपया पैसा का मिलना, स्त्री पुत्रादिक का मिलना, ये भी संयोग ही है ना। तो ये अकेले पुण्य से मिलते हैं ऐसा नहीं है। 90.9% अपने मोक्षों में भी, मेरे कह देने के बावजूद भी ऐसा मानते हैं जबकि आपके बहुत पुण्य का योग चल रहा है, पुण्य का उदय है, पुण्य के उदय से ये सब जो भी अपार परिग्रह इकट्ठा होता जाता है वो सब पुण्य के योग से है। और मैं कई दफे एक उदाहरण दे दे के बता चुका हूं कि यदि राम जैसा बेटा पुण्य के उदय से मिला तो क्या श्रेणिक का जो बेटा था ना, क्या नाम, कुणिक, वो भी पुण्य के उदय से मिला होगा, अथवा शाहजहां का बेटा औरंगजेब उसे पुण्य के उदय से मिला होगा जिन्हें उसे जेल में डाला। और ये पैसे को हम पुण्य के उदय से ही मानते हैं सब, कितने ही डंडे मारो, क्यों हमारे अंदर से भी वो बुद्धि छूटती नहीं है। लेकिन जो पैसा हमें जेल में पहुंचा दे, परिवार वालों से दूर कर दे, घर से दूर कर दे, स्त्री पुत्रादि से दूर कर दे, वो पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ कैसे माना जा सकता है, वो तो प्रतिकूल संयोग है ना। यदि हमारा थोड़ा सा पुण्य का उदय कम होता तो हमारे घर में दो तीन बेडरूम ही मुश्किल से होते, तो इन बुढ़े बुढ़ी माता पिता को एक ही बेडरूम मिलता। और पुण्य के उदय से 12-12 बेडरूम का बंगला बन गया तो बस जरा सा भी कोई प्रसंग बनेगा तो अलग अलग कमरे हो जाएंगे, बेटे बहू के भी अलग अलग हो जाएंगे, एक बेटे का अलग, बहू का अलग, बाप का अलग, माँ का अलग। जरा सा भी कोई झगड़े होना जरूरी नहीं है, एक को पंखा चलाना अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं लगता है। अब पुण्य का उदय है या पाप का उदय? अब इसकी वजह से वो कह रहे हैं, अब दो कमरे होने ही नहीं, झक मार के एक में ही रहेंगे ना, बीच का एडजस्ट करेंगे कि थोड़ा तू चला ले और मैं इतना तेज नहीं चला ले, और वे दो अलग अलग हो जाएंगे, बस खत्म। समझ गया ना? जवान बेटा बहू भी हो और बस एक को एयर कंडीशन सुहाता है, एक को नहीं सुहाता है, दो कमरे हैं, क्या क्या है, क्या है झगड़े, झगड़ा क्या है, दो है ना, तो बिना एयर कंडीशन में रहो, दो है। एक को टीवी चलता है सुहाता नहीं, दूसरे को चलता है, अपना दूसरा बंगला है ना, वहां टीवी नहीं है, वहां जाओ ना पापा जी, उनको पूरा बनवास हो जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं बताता हूं, लेकिन मेरे बहुत नियरेस्ट है एक व्यक्ति का, जो मेरे से भी बड़ी उम्र के थे, तो उनके भाग्य से उनके बेटे बहुत पैसे वाले, 10-10 करोड़ का एक एक फ्लैट बंबई में, सब भांजों के पास एक एक 10-10 करोड़ का, और उन्होंने माँ बाप को भी एक खरीद दिया 10 करोड़ का, तुम भी इसी में रहो। कितना बड़ा बढ़िया पुण्य का योग था कि 80 वर्ष के माँ बाप भी अपने बेटों बहुओं के साथ नहीं रह पाए, एक नौकर रख दिया, जब मर जाएंगे तो नौकर लोक समाचार सुना देंगे, एक बेटा अमेरिका में होगा, एक लंदन में होगा, एक कहीं से होगा, वो कहेंगे लाश को रोको, लाश को रोको, मैं पहुंच रहा हूं, दाग दाग, किसका दाग, काय का दाग, अवनंद जीवों का दाग काय को कराते हो, जलने दो ना बेचारे को शांति से। ये है नहीं, आप लोग भी निगाह डाल डाल के देखो अपने पैसे वाले रिश्तेदारों संबंधियों मित्रों की तरफ, तो ऐसे दृश्य दिखाई दे जाएंगे ना। तो मैं पूछता हूं, उनको इतना पैसे पुण्य के उदय से मिला था कि पाप के उदय से? सोचो, ये बिल्कुल गलत बात है, ये पुण्य से ही मिलते, जिन जिन संयोगों को आप पुण्य से मानते हो वे सब पुण्य से नहीं मिलते, एक कड़ी बात यह है। तो ज्यादा लंबा था नहीं हूं, मेरा मुझे एक पुण्य पाप अधिकार पूरा करना है इस सदन में, और 4 कलश 3 दिन है 3 कलश है, एक एक दिन में एक एक कलश निपटाऊंगा मैं, इसलिए इस विषय को मैं लंबाता नहीं हूं। अब रही बात है कि पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं, और इतनी बातें पड़ती है, संयोग नहीं, सब संयोग नहीं, इस शरीर पुण्य के उदय से नहीं मिला, ये शरीर अनुकूल शरीर स्वाध्याय में बाधा नहीं पड़े, ये पुण्य के योग से मिला। अब ये मानते हैं हम सब, मान लो अभी, और फिर ये परिग्रह को जोड़ने के लिए दुकान पे बैठ के जाके पाप कर सकते हैं, क्योंकि अजी पक्की श्रद्धा है कि पुण्य के योग से ही मिलेंगे, तो कम से कम पाप तो नहीं करना चाहिए ना। अब कुछ आदमी खड़े हो सकते हैं कि नहीं साहब, हमारी दुकान पर तो बिल्कुल ईमानदारी का काम है, बिल्कुल फिक्स रेट है, कोई बेईमानी नहीं है, और बिल्कुल इनकम टैक्स हम सीधा भर देते हैं, सेल्स टैक्स का एक भी गड़बड़ नहीं है हमारा, हम हरेक को आप कैसे तोड़ रहे हो? तो हम आपका नाम बीच में आ गया हो तो हम माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे कहते हैं कि इस दुकान पर जाकर बैठना ये पाप भाव है के पुण्य भाव है, न्यायपूर्वक बारे में भाई साहब बात कर रहा हूं, न्यायोपात धन कमाना, कहीं कमाने का जो भाव है ये पुण्य भाव है कि पाप भाव है? न्याय का भोग पुण्य भाव है कि पाप भाव है? न्याय का भोग समझ गए ना, विवाहता अनुकूल पत्नी बिल्कुल, उसके साथ उपभोग पुण्य भाव है कि पाप भाव है? और इस पर रसना इंद्री लगा लो, बिल्कुल पुण्य के उदय से मिली हुई शुद्ध सा बिल्कुल अठपैरा घी की बादाम का हलवा, उसके खाने का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव है? घ्राण इंद्री का भी लगाओ, ना सही इत्र फुलेल, उसमानंद जी मरते हैं लेकिन चंदन घिस गए, चंदन का तेल क्यों, ये पुण्यभाव है कि पाप भाव है। चक्षु इंद्री का भी लगाओ, कर्ण इंद्री का भी लगाओ। मेरे कहने का अर्थ ये है, वो ही अध्यात्म का भजन जब मधुर कंठ से सुनने में आता है तो हम झूम उठते हैं, और मेरे जैसा पढ़े तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। फिर भाव शब्द तो वही है, भाव तो वही है कि नहीं। तो ये कौन सा भाव है, कर्ण इंद्री का विषय है ना, यानी ये आप गए यहां से लेकर के, सुनो दुकान की तरफ मुंह करके गए और पाप बनना शुरू हुआ, घबराना नहीं। मैं उदाहरण देता हूं प्रकाश, अपने यहां एक दृष्टाष्टक स्तोत्र आता है, सुना, दृष्टाष्टक स्तोत्र मतलब क्या, अपन घर से निकले भगवान के मंदिर के दर्शन करने, तो उस वक्त कौन सा स्तोत्र पढ़ना चाहिए, उसका जो स्तोत्र पढ़ना चाहिए उसका नाम है दृष्टाष्टक स्तोत्र। तो कहां से शुरू करना चाहिए कि घर से निकले वो मंदिर की सुरई दिखी, वहां से शुरू करना चाहिए। अब ये बात हम 8-9 वर्ष की उम्र से जानते हैं, क्या है उसकी पहली पंक्ति सुनाता हूं मैं आपको। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, मुझे भव का ताप हरने वाला जिनेन्द्र भगवान का भवन दिखाई दे दिया, तो शुरू हो गई क्या। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, पुण्य वंदना शुरू हो गया वहीं से। पहले घर से अर्घ लेके चावल लेके और ऐसा निकलते थे ना मंदिर को दुपट्टा डाल पहन के, तो वहां से ही वे लोग स्तुति बोलने लगते थे। मेरी सासू जी को देखा है मैंने, गुना में हम साथ साथ थे तो वो पूरे बाजार में जोर जोर से बोली जा रही हाथ में लेके, मैंने कहा यहां तो मत बोलो बाजार है, नहीं नहीं, नहीं हमारे तो नियम है बोले। पुण्य बंधना शुरू हो गया, सम्मेशगर की यात्रा को गए तो जो लेके जीना चढ़े वो पर्वत, वहां से नहीं, वहां से जब आप घर से निकले हो, घर के 6 महीना पहले से एक एक चीज जोड़ रहे, यात्रा पे जाना है ना तो सब चीज ले जानी पड़ेगी, वहां से ही पुण्य बंधना शुरू हो गया। आप समझोगे बहुत बढ़िया बात, हम तो समझते ही नहीं हम इतना अधिक पुण्य मानते हैं, यदि जिसके घर मंदिर के पास है वो ज्यादा भाग्यशाली नहीं है, इस दरवाजे में से निकले इस दरवाजे में घुस गए उसमें क्या है, वो स्तोत्र पढ़ने का उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि हम तो घर से निकले और धर्म खाते में डाल देते हैं, डाल सकते हो धर्म करो तो धर्म खाते में डल सकता है। समझे, अब जो मैं बताना चाहता हूं वो बहुत खतरनाक बात है। तो दृष्टम जिनेन्द्र भवनम से पुण्य बंधना शुरू हो सकता है तो दृष्टम दुकान भवनम से वैसे ही पाप भी शुरू हो सकता है ना। मुझे ये बताना है, उदाहरण के लिए बताना है, बताना है। तो पाप भाव भी शुरू हो सकता है कि नहीं। अब मेरा तर्क यह है कि जब आपकी श्रद्धा तो इतनी पक्की है कि पुण्य से अनुकूल सामग्री मिलती है और आपको धन नहीं चाहिए, अनुकूल सामग्री चाहिए ना, स्त्री पुत्र मकान नारा रुपया पैसा सब अनुकूल सामग्री चाहिए ना, जो भाई को भाई नहीं रहने दे, माँ बाप को माँ बाप ना रहने दे, वो सामग्री पुण्य की वजह से मिली होगी या पाप की वजह से। हम तो इतना भाग्यशाली थे कि आज तक हमें बांटने का विकल्प ही नहीं आया, कुछ कुछ बांटने को हमारे पास कुछ था ही नहीं। भाइयों में कभी ये चर्चा ही नहीं हुई हम तीन भाइयों में कि भैया कौन क्या लेगा, तीनों बैठे हैं यहां पूछ सकते हो, सब कुछ हुआ ही नहीं, हमारे पास कुछ नहीं था तो हम इतने प्रेम से सारी जिंदगी रह सके। अब करोड़ों हैं और वो प्रेम से नहीं ले सकते, क्या स्वरूप है जगत का है? इसको मैं अनुकूल कैसे कहूं? तो ये मेरे कहने का आशय ये है कि वो पाप भाव श्रद्धा ऐसी है कि पुण्य से मिलता है, अनुकूल शब्द नहीं हुए, और वो क्रिया ऐसी है कि उसके लिए पाप करने के लिए दौड़ते हैं। तो कहां श्रद्धा के अनुकूल आचरण कहां हुआ? तो ये तुम्हें खराबी है ये नहीं बता रहा हूं मैं, ये वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी हुई है। और मुझे सिद्ध क्या करना है अभय कुमार जी? मुझे सिद्ध ये करना है कि ये जो हमारा जो शुभभाव है कर्मधारा, वो ज्ञान धारा के साथ रहे, जो मैं पढ़ने वाला हूं कलश, उसमें विरोध नहीं है, और उसमें रंज मात्र भी धर्म बुद्धि रहे और मुक्ति का कारण रहे तो अनंत विरोध है। वो तुम्हें कमाने का भाव आ गया, वो तो ऐसा संभव है संबंध स्त्री के जीवन में भी, लेकिन वो धर्म है ये बुद्धि, ये किसी कीमत में संभव नहीं है। इस बात का कलश अपन पढ़ रहे हैं। यावत पाक मुपैति कर्म विरत ज्ञानस्य सम्यग् न सा कर्म ज्ञान समुच्चयोऽपि विहिता तावन्न काचिच्छति किन्तत्रापि समुल्लसत्तवशतो यत् कर्म बन्धाय तन् मोक्षायास्तु तमेकमेव परमम् ज्ञानं विमोक्तं स्वतः। क्या कहते? बड़ा हिंदी का बड़ा आनंद है, बहुत मार्मिक है। अभय जी आप पढ़ो, इनसे बसी भी नहीं। जब काम एक साथ देखिए, आगे पीछे आगे पीछे एक साथ देखिए। क्लियर साफ बात है ना कि भैया जब तक कर्म वृत्ति पूर्णता को प्राप्त ना हो, कर्म वृत्ति माने कर्म धर्म नहीं है, कर्म मुक्ति का कारण नहीं है, कर्म माने शुभा शुभ भाव और शुभ क्रिया रूप कर्म, वो मुक्ति का कारण नहीं है। ये जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं हो, ये क्या मतलब? क्योंकि श्रद्धा तो एक साथ ही एक चोट में ही पूरी होती है, तो ये तो निश्चित रूप से चारित्र की बात है ना, क्योंकि धीरे धीरे पूर्ति तो चारित्र में ही होती है। अब देखो इसमें भी बहुत चक्कर खड़ा हुआ, बताऊं कहां झगड़ा है? पढ़ो अगला पेज देखो। जोलो अष्ट कर्म को विनाश नहीं सर्वथा तोलो अंतर आत्मा में धारा दो एवरनी। क्या इसका? कि जोलो अष्ट कर्म को सर्वथा नाश नहीं हुआ। क्या इसका अर्थ हुआ? कब जोलो माने तब तक, तब तक माने कब तक? जब तक अष्ट कर्म का नाश नहीं हुआ। ये तो ठीक है, मुझे तो गुणस्थान के हिसाब से बताओ, जोलो तोलो से काम नहीं चलेगा। अब इतना क्लियर लिखा है कि अष्ट कर्म को विनाश लिखा है ना, और अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा सब जयचंद छाबड़ा का सब का, ये वहां तक है ही नहीं है बात, ये शुद्ध दशा की बात ही नहीं है। अष्ट कर्म का विनाश तो सिर्फ सिद्धों के ही हुआ है, और चार कर्मों का विनाश तक की ही बात है। اب لکھ دیا تو بنا دیتا میں کیا کروں لکھ دیا تو بنا دیتا سے پوچھو کیوں لکھ دیا. ہم تو ارتھ نہیں کریں گے, ہم تو یہ کہیں گے جب تک منہ کا ستتا ناش نہیں ہوا ہے تب تک. میں نے بعد میں کہ گنستان تک تیر میں تک لیں گے. یہ بھی آئے گا, اپن پڑھیں گے اس کا ارتھ مرتھ نیچے سب آئے گا. میں تھوڑا آپ کو نمونہ بتا دیا بھائی, اب کہاں سے کوئی بات بیچ میں آگم میں ہی نہ آ جائے, اس کی وجہ سے ہم بنارسی داس کو اپرمان گھوشت نہیں کر سکتے کیوں؟ اور لکھا ہے تو تم آگے ہمارا گلا پکڑو تو ہم اپنا گلا بھی نہیں پکڑنے دیں گے. کہ کیا کرو گے سر؟ کہہ دیں گے ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں, تمہیں سمجھنا ہو تو چپ چاپ بیٹھو, ہم جو بتا رہے وہ سمجھو, اور نہیں سمجھنا ہے تو اپنے گھر جاؤ. ساتھ رہے تم ہو, کرو نا, محنت کرو نا, تم کرو خود, نکال لو ارتھ, نکال لو ارتھ, ہم کیا کریں؟ کیوں صاحب بنارسی داس, بنارسی داس جو آپ پرمان مانتے کہ نہیں, آپ پرمان مانتے, ہم یہ مانتے, یہ مانتے, ہم کیا مانتے, ہمارا ماننا ہمارے پاس رہن دو نا, اور تمہارا ماننا تمہارے پاس رہن دو نا. یہ تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے نا, سب اپنے سوتنتر روپ سے اپنا رہ سکتے ہیں نا. اور کسی سے نہیں الجھنا یہ بھی کوئی پاپ ہے؟ جواب دینا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا. کیوں کیوں جواب دینا پڑے گا؟ اس میں گیت میں چھاتو کیا, گیت میں چھاتو, جواب دینا پڑے گا. نہیں دینا جواب, بولو کیا کرے؟ میں پوچھتا ہوں کہ ہر چیز کا ہمیں جواب دینا ضروری ہے کیا؟ کوئی کسی کا بھی, میں ایسا نہیں سمجھا جو یہاں نہیں ہے ان سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو یہاں ہیں ان سب سے کہہ رہا ہوں. ہم کسی کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں, یہ بھی ہمارا اپرادھ ہے. پھر کل تو تم کہو گے کہ ہم نے تمہیں ماں بہن کی گالی دی تو تم نے ہمیں جواب تو دیا ہی نہیں, تو تم نے اپنی زبان خراب کری, تو کہ ہم بھی اپنی زبان خراب کریں؟ ایک اسی جے پور میں ایک کہانی لکھی گئی تھی جو وشو میں ہندی ساہتیہ کی سروشریشٹھ کہانی مانی جاتی ہے, اور اس کے لیکھک نے صرف تین کہانیاں زندگی میں لکھی. اس کا نام تھا چندر دھر گلیری شرما, جے پور کا تھا, پگڑی چھاپ تھا. ایک کہانی, ایک لکھا سکھی جیون, ایک اس نے کہا تھا, سکھی جیون 60-70-80 پیج کی ہے لیکن وہ اتنی لوکپریہ نہیں ہوئی, لیکن اس نے کہا تھا یہ بہت لوکپریہ ہوئی. اس کے پہلے ہی پیج پر اس نے امرتسر کی گلیوں کا ورنن کیا. کیا امرتسر سے ہے نا پنجاب میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تانگے والا, تانگے والے کا ورنن کر رہے ہیں. کوئی تانگے والے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, وہ کہانی تو بالکل جدی ہی ہے کہ جس امرت چند کی سگڑی سگڑی, امرتسر کی سگڑی سگڑی گلیوں میں تانگے والے ہٹ جا پتا پیاریا, بھگ جا بیٹا پیاریا, لمبی عمر والے ہٹ جا, ہٹ جا تانگے والے, کہ تیری عمر دی لمبی ہے, تو میری پتروں کی پیاری ہے, تو تم میرے راستے سے ہٹ جا, نہیں تو ابھی مر جائے گی. کیا ایسا میں وہ درس جو اس نے دیکھا ہوگا کبھی نے انہیں شبدوں میں باندھ دیا, ایسے تانگے والے. اور پھر اس نے ایک گالی لکھی کہ وہ کیسی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں وہ تانگے والے. اب سمجھنا میں کیا کس کے لیے یہ بات سنا رہا ہوں آپ کو, کہ کتنی گندی گندی گالیاں دیتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کی نانی سے اپنا نکٹ کا سمبندھ استھاپت کرتے ہوئے, جسے اپن کہتے ہیں ماں بہن کی گالیاں, وہ شبد اس نے نہیں بولا لیکن پاٹھک ان شبدوں تک پہنچ گیا. میں نے گھوڑے کی نانی سے اپنے نکٹ کا سمبندھ استھاپت کرتا ہوا, مانے گھوڑے کا نانا بنتا ہوا, مانے سوئم کو گھوڑا بنتا ہوا, اب کو گھوڑا گھوشت کرتا ہوا. کیا इतनी सभ्यता से बात की जाती है, एक मतलब जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं वो कितनी गंदी से गंदी बात कितने अच्छे अच्छे शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। ये बात उस पेज पर उस कहानी को सबसे ज्यादा नंबर मिल गए क्या? और आपको पता ही नहीं चलेगा अंत तक पढ़ लेंगे तो इस कहानी का नाम उसने कहा था क्यों रखा क्या। जब पूरी कहानी हो जाएगी तब भी आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि क्या हो गया, समझे ना। फिर भी सर्वश्रेष्ठ क्यों मानी, सबकी समझ में आनी चाहिए ना। जब समझदारों की आएगी, मूर्खों की समझ में आने से कोई चीज अच्छी बुरी होती है क्या? टोटा मंजी ने लिखा ना, जैसे अलंकार क्यों लिखे इनने, सीधी सीधी लिख देते तो उन्होंने कहा ज्ञानी जन तो अलंकार में ही बात करें और जिनकी समझ में नहीं आएगी वहां के ज्ञानी जन उन्हें समझा देंगे। लिखा था, लिखा कि नहीं लिखा, हल्की बात क्यों करें। उसने कहा था, अब आपका क्या कहा था उसने, इसका भी अर्थ बताऊं क्या आपको? तुम तो जानते ही हो गए ना, क्या जानता है बोल बता थोड़ा, क्या नाम उसका क्या तुम्हारे? आदित्य, बोल। पढ़ी कहानी कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, गया काम से। ऐसा था कि एक लड़का और एक लड़की थे, वे दोनों एक दुकान पे दही खरीदने रोजाना जाते थे और वो लड़का रोजाना उस लड़की से पूछता था कि तेरी कुमराई हो गई है क्या, है? तेरी सगाई हो गई है क्या, और लड़की दब तेरे कह कह के ऐसा मार के भाग जाती थी। अब समझे, ये तो है उसका आदि का बीज, और अंत का बीज क्या कि फिर उस लड़की की शादी एक सेना के ऑफिसर से हो गई, सूबेदार से हो गई, और वो लड़का उसी सेना में भर्ती हो गया, जवान हो गया। जवान माने सैनिक, उसी सेना में सैनिक हो गया। जब अंग्रेजों की और जर्मनी वालों की हिटलर की लड़ाई चल रही थी तो उन दोनों को एक मोर्चे पे भेजा गया जिसमें उसका पति भी था वो सूबेदार, और वो बालक भी था जो तेरी कुमराई होगी बाजा, वो भी साथ में था। तो पूरी कहानी में आप पकड़ ही नहीं पाओगे क्या कहानी है, समझिए ना। बहुत लंबी लंबी चलती है, बहुत बढ़िया बढ़िया चित्रण है। तो वो जब जाती है दोनों, तो वो पति को विदा करती है, वहीं पर वो भी खड़ा है नौकर बन के, जैसे होता ना सैनिक बन के। तो वो सैनिक से कहती है कि मेरे पति जा रहे हैं, तू साथ में है, तू इनकी ड्यूटी में है, तू इनका ध्यान रखना क्या, तू इनका ध्यान रखना, बस इतना वो कह देती है। और फिर वो लड़ाई होती है और कितना कितना लंबा लंबा वर्णन चलता है, और अंत में वो सूबेदार मरने की स्थिति में आ जाता है। तो ये वो जो सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर और उसको उसकी गोली अपने सीने पर खा लेता है, समझे आपकी ने? तो उसको बहुत आश्चर्य लगता है कि तूने ऐसा क्यों किया, हर एक आदमी अपनी जान तो प्यारी होती है, तू मुझे गोली तो नहीं मार रहा था लेकिन तू एकदम मेरे सामने आ गया, अपनी गोली अपने सीने पर क्यों ले ली। वो उससे पूछता है बहुत, तो मरते मरते उसके मुख से इतना निकलता है कि उसने कहा था। समझ में आई आपने, तो किसने कहा था, समझ में आई कुछ के नहीं? माने मेरी उस प्रेमिका ने जिसकी शादी तुमसे हो गई, मेरे को तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी थी, गवर्नमेंट ने नहीं, गवर्नमेंट की दृष्टि से भी वो उसका सुरक्षा गार्ड था, वो उसके तो उसने वो गवर्नमेंट की तनख्वाह की नहीं चुकाई, काय की चुकाई, अपनी प्रेमिका को उसने वचन दिया था कि मैं अपनी जान की बाजी लगा करके भी तेरे पति की रक्षा करूंगा। क्यों? मेरा वो ऑफिसर है इसलिए नहीं, क्योंकि वो मेरी प्रेमिका का पति है। तो वो कहानी की थीम, तो थीम बढ़िया, लिखावट बढ़िया, उसकी प्रस्तुतिकरण बढ़िया, हर दृष्टि से वो सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी गई। और लोगों की समझ में नहीं आता, हमने पढ़ती आठ दस बारह वर्ष की उम्र में, इसने कहा था क्या रह गया, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, उसने कहा था, समझ में नहीं आता कहाँ है उसने कहा था। जब हमारे प्रोफेसर लोग उसका मन निकाल के बताते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया अत्यंत संक्षिप्त में, तब समझ में आता था ये बात है, क्योंकि उसने कहा था और कहीं आता ही नहीं है, सिर्फ अंतिम शब्द है। क्या उसने कहा था? कि सूबेदार ने मरते 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 से पूछा कि तूने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया, तो कहा उसने कहा था, खत्म, वो कहानी खत्म हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन श्रद्धा के लेवल पे उसमें उपाधेय बुद्धि होना। क्यों? अब वो जो मैं बोलता हूं कि दूसरे की स्त्री से इतना प्रेम करना ये पाप है कि पुण्य है, क्या धर्म है, ये बताओ। क्या समझ गया ना? क्या वो उसने किसने की? वो तो दूसरे की पत्नी हो गई थी ना, तो उसके जो इतने संबंध रहे इतने, वो उन संबंधों को क्या नाम दें हम? और जो उसने संबंध निभाए उन संबंधों को हम क्या नाम दें? तो वे कहते यह कर्म, यह कर्म वृद्धि जब तलक ना पूर्णता को प्राप्त हो, हाँ तब तलक यह कर्म धारा ज्ञान धारा साथ हो। वो ज्ञान धारा अंदर में चलती रहेगी श्रद्धा के लेवल पर, और कर्म धारा भूमिका के अनुसार चलती रहेगी। ये चौथे गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक की बात है ना। अवरोध इसमें है नहीं, इसमें कोई विरोध नहीं है। तुमको अवरोध लिखा, तुम विरोध क्यों बोल रहे हैं? क्यों? अरे अविरोध नहीं, अवरोध। अंतर समझ में आया? अवरोध माने रुकावट, कि इसमें कोई रुकावट नहीं है, है? अवरोध इसमें है नहीं, पर कर्मधारा बंधमय, वो कर्मधारा बंद करेगी, वो मुक्ति मार्ग एक ही है, ज्ञान धारा मुक्तिमय। वो मुक्तिमय जो ज्ञान धारा है वही मुक्ति मार्ग है, मुक्तिमय भी है वो और मुक्ति का मार्ग भी है वो ज्ञान धारा। दोनों चीजें एक साथ रहती हैं। अब एक साथ रहती हैं, जगत को बड़ा अटपटा लगता है, ये कैसे सकता है? यही तो मैं कहता हूँ, चौथा गुणस्थान का स्वरूप समझना सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों? सिद्धा तो सिद्ध जैसी, और जीवन ऊपर से मिथ्या दृष्टि जैसा। कैसे? लड़ाई लड़ रहा है, धंधा पानी कर रहा है, जो अंतर है ना अंतर में, वो अंतर बाहर प्रकट नहीं होता। उसे असंयमी क्यों कहा? संयम तो प्रकट हो गया अनंतानंदी कसाय के अभाव में। अनंतानंदी कसाय के अभाव में जिसे असंयम कहते हैं उसको दुनिया असंयम मानती नहीं। अब प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में जो विषयों में प्रवृत्ति दिखाई देती है जगत, उसे ही असंयम मानती है, और उसको हट जाए तो संयम मानती है। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन उसका, अरे छह खंड को जीतने निकल रहा है, 96,000 शादियां कर रहा है, कितने बच्चे होना है, भाई पे चक्र चला रहा है। अब और मिथ्या ऋषि का और क्या होता होगा? मिथ्या ऋषि और क्या करेगा? इससे ज्यादा मिथ्या ऋषि क्या कर लेगा भाई क्रिया में? और भाव के बिना तो क्रिया होती नहीं है। इसलिए वो चौथा गुणस्थान समझना बहुत कठिन है। इसलिए वो सारे चक्कर आते हैं। भरत चक्रवर्ती के बारे में कहा, भरत जी घर ही में बैरागी और विसामय करने खड़े होते थे तो सारी अंगूठियां नीचे गिर जाती थी, माने शरीर में इतना शिथिलपन आ जाता था, ढीलापन आ जाता था, माने तनाव से लेस हो जाते, टेंशन से रहित हो जाते थे। वो टेंशन से रहित होने को बता रहे वो, अफर वो भी है और वो सारी कहानी कैसे दुनिया भर के चलते हैं, ये उसी का वर्णन है, खासकर चौथे गुणस्थान का। बाकी तो बारहवें गुणस्थान तक की बात है ना। देखो जब तक ज्ञान की कर्म वृत्ति, अदो ज्ञान की कर्म वृत्ति कैसी भाषा है, ज्ञान की कर्म, ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान माने समय से ज्ञान तार्थ, वो प्रकट पीछे चल रहा है, पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, माने चारित्र में भी पूर्ण नहीं होती, श्रद्धा में तो होगी पूर्ण, तो पूर्णता को प्राप्त नहीं होती माने चारित्र में भी पूर्ण, तो वो बारह प्रस्थान में पूरी हो जाती है। तब तक कर्म और ज्ञान का एकत्रित बना शास्त्रों में कहा है, शास्त्रों में क्या कहा है कि दोनों को एक साथ करना चाहिए, करना चाहिए नहीं होती है, ऐसा जानते हैं कि इलाहाबाद में त्रिवेणी का संगम हुआ है ऐसा कहा जाता है, गंगा यमुना और सरस्वती तीन नदियां जाकर के इलाहाबाद में मिलती हैं, तो दो नदियां तो सारी दुनिया को पता है कि एक यमुना दिल्ली होती हुई आती है ना ऊपर से, और एक गंगा जो दिल्ली नहीं जाती है, वहां से 50-60-70 किलोमीटर दूर से निकल के और हरिद्वार से और यहां होती हुई और वहां कानपुर और उधर निकल जाती है पटना तरफ, एक की धारा बिल्कुल सफेद है पानी निर्मल, और एक का काला पानी है मृत मैला, यमुना की धारा मटमैली है और गंगा की धारा निर्मल है। गंगा की धारा निर्मल क्यों है, क्योंकि वो बर्फ बर्फ में से निकल के आती है और ककड़ीली पथरीली जमीन में से पास होती है, इसलिए उसमें गंदगी माने धूल मिट्टी नहीं मिल पाती है, और यमुना की धारा ऐसे एरिया से निकलती है कि जहां धूल मिट्टी और इस तरह का वो ज्यादा है, इसलिए वो मटमैली होती है। अब ये दोनों धाराएं जाकर इलाहाबाद में मिलती है, तो इलाहाबाद से जब पटना की तरफ जाओगे आप आगे, तो एक तरफ पूरी यमुना अलग दिखती है और गंगा अलग दिखती है, वो पानी मिल नहीं पाता है, ऐसा चला जाता है, इस घाट से देखो तो पानी मटमैला और उस घाट से देखो तो पानी एकदम निर्मल, और नदी एक होगी दोनों मिलकर के। अरे सरस्वती कौन सी नदी है, तीसरी नदी वहां है ही नहीं, तीसरी धारा दिखती ही नहीं, अब उसे त्रिवेणी बोलते तीन चोटियां, तो क्या क्या उसके अर्थ किए जाते हैं मालूम, अरे नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, साहित्य पढ़ते तो ही पता चल जाता है, एक तो आई गंगा और एक आई, एक चोटी तो ये हो गई गंगा की और एक चोटी बेणी माने चोटी, और एक चोटी यमुना की हो गई, और एक दोनों मिलके आगे बड़ी वो हो गई, समझ में आया, क्योंकि वो आगे जो बड़ी है ना वो गंगा है ना वो यमुना है, आपने सुना होगा वो पानी तो गंगा जमुनी पानी है, गंगा जमुनी पानी मतलब समझ गए ना, एक तरफ काला कल उठा और एक तरफ गोरा भूरा, समझ रहे ना, तो तीसरी धारा वो है पर तीसरी नदी वहां है ही नहीं, तो एक व्याख्या तो ये हो गई, और दूसरी व्याख्या ये है कि वो कहते अंदर से आती है एक पाताल से एक नदी, और वो अंदर ही आकर के वहां मिल जाती है, ऐसी व्याख्या भी करते हैं उनमें, और तीसरी व्याख्या ये है कि वहां पर इलाहाबाद शिक्षा का सबसे बड़ा क्षेत्र था, एजुकेशन का, इसलिए सारे विद्वान वहां रहते थे वेदांत के भी उस जमाने में भी, और ये जब अंग्रेजों के राज में भी इलाहाबाद ही सबसे पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद का था, सबसे पहला एक विश्वविद्यालय था हिंदुस्तान में, बस हाईकोर्ट भी सबसे बड़ा इलाहाबाद का, मद्रास के लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में आना, पर हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तो लंदन में, तो कानून के विद्वान मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ये सब वहां क्यों पहुंच गए, और बड़े बड़े हिंदी साहित्य के विद्वान, तो वो कहते हैं सरस्वती ये है, वहां जो विद्वानों का वास था ये सरस्वती का वास है, क्या सब तरह के विद्वान, तो सरस्वती ये तीसरी नदी है सरस्वती, अब ये सब बातें कोई ऐसी थोड़ी स्टडी करो सब पता रहता है, ये सब हमको बहुत पुरानी जब गुरुदेव से समागम में तब तक की बातें हैं, लेकिन आजकल ये पढ़ना लिखना बंद हो गया। मैं ये कहता हूं हम लोग जब पढ़ते थे तो क्लास की पाठ्यक्रम की किताबें तो दो चार पढ़ते थे और 50-150 किताबें बिना पाठ्यक्रम की पढ़ते थे। रोजाना हम लाइब्रेरी जाते थे, एक दिन भी नहीं आते थे, और एक किताब लेके आते थे और 2-3 दिन में खत्म किए बिना नहीं रहते थे बाबरे। और सारे धर्म युग और सबका एक हिंदुस्तान और सरिता और माया और नमन कितनी कितनी पत्रिकाएं वहां 2-2 घंटा बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते थे, क्योंकि खरीद तो सकते नहीं थे, पैसा तो इतने थे नहीं, इतनी हम खरीद लें और वहीं जाकर पढ़नी पड़ती थी, मिलती नहीं थी, किताबें लेके आते थे। अभी तो कहते उत्ती बस बाकी तो है कुछ राय नहीं, ये टीवी ने सत्यानाश कर दिया, कोई पढ़ना लिखना जानते ही नहीं है। तो ये सब बातें मन में आती हैं, अध्ययन करके रुचि तो हो। जब मैं सबसे पहले करौली में हेडमास्टर बन के आया ना भाई जी, तो मैं एक लाइब्रेरी में ही सोता था, तो उसमें 150 किताबें थी, तो मैंने 3-4 महीने में पूरी कर दी, पूरी एक पहले नंबर से उठाई और अंत समय तक पढ़ जाने। फिर मैं भीड़भाड़ गया, वहां बड़े ज्यादा रहते थे, तो मैंने कहा मैं तो वहां नहीं रहूंगा पारोली में। तो एक कस्तूर चंद जी थे, सोगानी थे क्या, अजमेरा, बुजुर्ग थे मेरे से, दादाजी मेरे दादाजी की उम्र के, माने मैं था 18-19 वर्ष का और बेरे होंगे 90 वर्ष के करीब। उनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, सब जैन शास्त्रों की, राजवाड़ी सब सारे जैन शास्त्र के 5-6 अलमारी भरी थी जिस कमरे में वो रहते थे। वो ब्रह्मचारी हो गए थे, एक नीचे कमरे में रहते थे। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रहूंगा वहां, तो उन्हीं ने मुझे बुलाया था कि क्यों, मैं कहा कुछ पढ़ने लिखने को है ही नहीं, एक लाइब्रेरी थी तो मैंने पूरी पढ़ ली। तो बोले ये सारी शास्त्र रखे हैं ना, जितना लेना हो ले जाओ। मैंने क्या कहा था ना, मुझे बहुत संकोच हो रहा है लेकिन कह देता हूं, मैंने कहा ये किताबें, ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मैं ये नहीं पढ़ना चाहता हूं कुछ दिनों। जैन शास्त्र भी बहुत पढ़े थे, तब मैं राजवार्तिक सर्वार सिद्धि सब पढ़ा सकता था, अब समझे ना, अब भूल भाल गया उतना, अब वो बात नहीं रही है पहले जैसी। तो ये पढ़ते पढ़ते तो दिमाग सड़ गया है, शादी के पहले की बात है राजेंद्र, मैंने ये कहा था, अब कोई और तो उनके, आप जितनी किताबें खरीदना हो खरीद लो लाइब्रेरी के लिए, लेकिन आप यहां से जाओ। लोगों को पढ़ने की आदत ही नहीं है, कहां ही ना समझ में नहीं आता है। 150 पेज पढ़े बिना मैं आज तक नहीं सोया उन दिनों में, 30 साल रोजीना, और तब जो इतना साहित्य लिखा, ये पश्चाताप वगैरह सब वगैरह इतना लिखता पड़ता था उस वक्त में। अभी नई उम्र के पकड़े पढ़ते ही नहीं है, हिंदी अखबार तक नहीं पढ़ते, अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं है। सीखना कुछ सीखने के लिए कहता हूं, अवरोध इसमें है नहीं पर कर्म धारा बंधमय, मुक्ति मार्ग एक ही है ज्ञान धारा मुक्तिमय। अब बनासी दास जी का पढ़ते हैं, देखो, जलो अस्ते कर्म को विनाश नाही सर्व था, तोलो अंतर आत्मा में धारा दो ये बरनी, एक ज्ञान धारा एक सुबह। ज्ञान धारा मोक्ष रूप, ज्ञान धारा मोक्ष स्वरूप है और मोक्ष की करणहार और मोक्ष के करने वाली है। माने कहां से चल रहा है प्रकाश, बंध हेतु और बंध कारण, मोक्ष हेतु और मोक्ष कारण। जो मोक्ष का हेतु है वो ही मोक्ष रूप है, जो मोक्ष रूप है वो ही मोक्ष का कारण है। तो ज्ञान धारा मोक्ष रूप है, मोक्ष की करने वाली है और दोख की हरण हार और दोषों को हरण करने वाली है वो बहुत समुद्र तरनी संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाली है। इतनो विशेष जो कर्म धारा बंद रूप, तो इतना फर्क है, दोनों धाराएं एक साथ रहती हैं, गंगा यमुनी। अपन जो बात यहां से बड़े थे, एक कर्म धारा है यमुना और ज्ञान धारा है गंगा, समझे। यहां से बढ़ गए थे अपन, वहां पर प्रयाग पहुंच गए थे। इतने विशेष देश हो गया, जोलो अष्ट कर्म को विनाश नहीं सर्वथा, ये तो ठीक है ना। तोलो अंतरात्मा में धारा दो ये बरनी, अब यहीं पकड़े गए। फिर अंतरात्मा कह रहे ना, तो जहां तक अंतरात्मा होंगे तभी तक तो होगी बात। तो अरहंत सिद्धि में अरहंत कैसे शामिल होंगे, तेरे मात्र गुणस्थान कैसे शामिल होगा, उन्हें सिद्ध तक ही बोल दी है। तो सिद्ध तक माने यहीं तक लेना बस, समझे ना। पर नीचे ही आ गया कि जो लोग अष्टकर्म को, अब अष्टकर्म कैसे लिख दिया, क्योंकि संस्कृत में क्या लिखा है प्रकाश देखो, है किताब सर्ववृत्ति, तो सारी वृत्ति कर्म से, तो कर्म की सर्ववृत्ति, तो यहां तो शुभभाव रूप कर्म की सर्ववृत्ति थी, शुभाशुभ भाव रूप, और उन्होंने वो ज्ञानावरण आदि कर्म की कर्म वृत्ति मान ली, इसलिए वो आठों कर्म की बात हो गई। ये अष्टकर्म की बात कहां है, गड़बड़ कहां हुई, समझ में आया कि नहीं आया आपको, बनाई जा रही गड़बड़ बताने लगे। इतने घबराना नहीं, इस सब ऐसा पूरा आगम पढ़ोगे गहराई से तो ऐसा बहुत आएंगे चक्कर, लेकिन जवान पे कंट्रोल रखना, एक मिनट में ऐसा नहीं कि जे अप्रमाण बे अप्रमाण सब घोषित नहीं करना, बस जयसेन को आदर्श मानना, अत्यंत विनय पूर्वक अपनी बात को भी रख देना, और पूर्वाचार्यों को किसी कीमत पे अपमान ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना। आगे समझना, ठीक है आगे बढ़ो। एक ज्ञान धारा, एक शुभाशुभ कर्म धारा, अरे क्लियर तो लिखा है शुभाशुभ कर्म धारा, यहाँ कहा ना ज्ञान वर्णादि कर्म धारा, आठ कर्म कहां से आ गए, यहाँ ये शुभाशुभ आठ होते हैं, है? इतना विशेष है कि दोनों एक साथ रहने में विरोध नहीं है, लेकिन वे उनकी परस्पर विरोध पना खत्म हो गया हो ये बात नहीं है। वो अपना बंद करेगी और वो अपना बंद को रोकेगी, और दोनों अपना अपनी भूमिका के अनुसार काम करते रहेंगे। तो अब मान लो चौथे पांचवें छठवें जिस गुणस्थान में भी लो प्रकाश, तो उस गुणस्थान में जितना बंद हो रहा वो कर्मधारा का काम है, और जितना बंद नहीं हो रहा वो ज्ञानधारा का काम है। दोनों अपना अपना काम करेंगे, लड़का नहीं कि वो रोकेगी बंद को, वो करेगी तो महायुद्ध हो जाएगा ना, लेकिन आज तक तो महायुद्ध हुआ नहीं, क्योंकि दोनों अपना अपना काम करती रही। तो वहां दोनों ही चीजें हैं ना, कर्म का बंद भी हो रहा है और बहुत से कर्मों का बंद रुका भी है, मिथ्या प्रनंतानबंदी आदि का रुका है, और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि का हो रहा है। तो जो हो रहा है वो कर्म धारा के कारण, और जो नहीं हो रहा है वो ज्ञान धारा के कारण। इस दुनिया में कितनी नालायकी है, फिर भी सज्जनता शेष है, अभी पूरी सज्जनता खत्म नहीं। अखबार में आता है ना, आज ऐसे ईमानदार रिक्शे वाले हैं कि मेरे एक लाख के नोट वाला बैग था, उन्हें चुपचाप वापस दे दिया, ये पता होने पर भी कि इसके अंदर नोट है, ऐसे भी आता ना अखबार में कभी कभी। तो कर्मधारा के बीच में ज्ञानधारा चलती रहती कि नहीं चलती रहती, और ऐसे भी लोग सर्वस्व उनका ही था, फिर भी उनमें सेंध लगा के और उन्होंने उसमें से जेब काट ली, कोई कमी नहीं थी। दो ही तरह के आते हैं ना, तो वो दोनों काम हो रहा है। जो कहते जगत में जो भी अच्छाई बची है वो उन सज्जन लोगों के कारण बची है, और जो भी नालायकी है वो दुष्ट लोगों के कारण है ना। और जगत में दो ही चीजें हैं कि नहीं है, हर आजकल कोई टैक्स देता ही नहीं है। अरे नहीं देते होते तो देश चल कहां से रहा, ये ऑफिसरों की तनख्वाह कहां से मिल रही, क्यों? और सब देते होते तो हमारा अरबों रुपया स्विट्जरलैंड के बैंक में कैसे पहुंच जाता, वो कहां से पहुंच गया, एक नंबर में से तो कोई ले नहीं गया, क्यों? तो अभी दो के बीच में ही है ना कुछ, जो कुछ है टैक्स लोग नहीं देते हैं ये बात भी सच्ची है, और देते हैं ये बात भी सच्ची है। ये अरबों के बजट, नई नई योजनाएं बन रही, बांध बन रही है, आता नहीं आता था, हर जगह प्रांतों को बांट रहे, एक ये सब्सिडी दे रहे, काय में तेल में तो आज सब सब चीजों में दे रहे ना किसानों को, ये सब कहां से आ रहा है? कोई टैक्स नहीं देता है तो नोट छाप छाप के दे रहे क्या वो? ये सारा ये जाल लग रहा है, ये सड़कें बन रही है, मेट्रो लाइन बन रही है, ये कैसे बन रही है? टैक्स नहीं देते हैं तो मैं एक बात कहा करता हूं कि लोगों ने ऐसी धारणा फैला करके देश का बहुत खराब किया कि सरकारी कर्मचारी कोई काम ही नहीं करते। अब ऐसे करके इससे क्या होगा? हर कर्मचारी को काम नहीं करने की प्रेरणा मिलेगी, वे नहीं करते तो अपन क्यों करें? अपन क्यों करें? अपन क्यों करें? अपन क्यों करें? अब मैं कहता हूं कोई कर्मचारी काम नहीं करता तो ये रेलें दौड़ती कैसे? कोई चलाता होगा ना इसे? जितने टिकट बढ़ते हैं ये कोई बांटता होगा कि नहीं बांटता होगा? ये टिकट कैसे बढ़ते हैं? ये गाड़ी बहुत गंदी रहती होगी लेकिन रोजीना उसमें सफाई होती है कि नहीं होती है? क्यों? तुम बैठे हो और वहां एक चाय आ जाती है तो कोई काम नहीं करता होता तो उसमें से आ जाती है? काम नहीं करते कैसी बात करते हो तुम? काम चोर होंगे 1%, और 99% लोग काम करते हैं भाई साहब। कह रहे एक कर्मचारी कोई काम ही नहीं करते तो ये लाखों का शायद सबके पैसे ही पहुंच गया, प्रेस में छपा, यहां गया वहां गया, ये सब काम नहीं, काम नहीं करते हो तो क्या क्या होता बोलिए? ये जबरदस्ती झूठी गालियां देते रहना चाहे देश को हो चाहे समाज को हो चाहे कहीं भी संस्थाओं को, ये अच्छी बात नहीं है, है ना? बेईमानी, समय की बेईमानी, ये सब एक दो % होगी। ये देश चल रहा है, समाज चल रही है, निरंतर विकास हो रहा है, यदि नहीं होता तो कैसे होता, कहां से आता बोलिए? इसलिए उज्जवल पक्ष को देखना सीखे हम तब। अब देखिए मैं आपको जयचंद जी छाबड़ा का नीचे पढ़ लेना भाई तुम घर, कल जो मैंने बता दिया इसका भाव कि इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता, जो अष्ट कर्म को विनाश कर नहीं होता, माने जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता, यथाख्यात चारित्र तेरे में तेरे हिंदुस्तान में होता है तो उन्हें लिख दिया यथाख्यात चारित्र नहीं होता, तब तक की बात है। उदय दिन छावड़ा ने भी ये बात लिख दी है, और गुरुदेव जी का भी पढ़ लेना, बाकी अपन कल 111वां छंद पढ़ेंगे हम।